Market Hunter. Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Kumar Mishra.
धन्यवाद निशित. नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक सिद्धार्थ सिंह. सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
आप दोनों को नमस्कार.
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर. अंग्रेजी में हेडलाइंस बता रहे हैं मेरे सहयोगी निशित कुमार.
The headlines: domestic benchmark indices continue to rally for the fifth consecutive session. Sensex crosses 85,000 mark while the Nifty settles over 26,000 for the first time. Indian rupee appreciates 7 paise to close at 83 rupees and 60 paise against the US dollar. India surpasses Japan to become the third most powerful nation in Asia, reports the Asian Power Index. And crude oil prices trading lower amid speculation over Chinese stimulus plans.
प्रमुख घरेलू सूचकांक आज लगातार पांचवें दिन रिकॉर्ड स्तर के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 85,000 के ऊपर बंद और निफ्टी ने आज पहली बार 26,000 के आंकड़े को पार किया. रुपया डॉलर के मुकाबले 7 पैसे की बढ़त के साथ 83 रुपये और 60 पैसे के स्तर पर बंद. एशिया पावर सूचकांक में भारत जापान को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है और चीन की आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने की धारणाओं के बीच क्रूड कच्चे तेल में गिरावट दर्ज हुई है. और सबसे पहले शेयर बाजार की खबर. प्रमुख घरेलू सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी कारोबार के आखिरी घंटे में आज एक और नई ऊंचाई पे पहुंच गए. हालांकि दोनों सूचकांक आज के सत्र में लाल निशान पर खुले थे. सत्र के दौरान निफ्टी 26,032 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पे पहुंच गया था, लेकिन यह आखिर में 0.25% या 63 अंक की बढ़त के साथ 26,004 पर बंद हुआ. इस बीच सत्र की समाप्ति पर बीएसई सेंसेक्स ने 0.3% या 255 अंक की बढ़त के साथ सत्र का समापन 85,169 पर हुआ, जबकि दिन के कारोबार में सेंसेक्स ने 85,247 का नया सर्वकालिक उच्च स्तर हासिल किया. यह लगातार पांचवां सत्र है जब बाजार रिकॉर्ड शिखर पर पहुंचा है. बीएसई के व्यापक बाजार में आज मिड कैप सूचकांक 0.53% गिरा और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.35% फिसल गया.
Domestic benchmark indices, the Sensex and the Nifty hit another fresh high in the last hour of the trade. However, both the benchmark stocks opened today in the red. The Nifty 50 reached a record high of 26,032 during the session before closing with a gain of 0.25% or 63 points at 26,004. Meanwhile, the BSE Sensex also achieved a new all-time high of 85,247 in the intraday trade and concluded the session with a gain of 0.3% or 255 points at 85,169. This is the fifth consecutive session where the markets had hit a record peak. In the National Stock Exchange, 135 companies hit their 52-week high, 34 hit the 52-week low. The broader market at the Bombay Stock Exchange underperformed the benchmark indices. The mid-cap index fell 0.53% and the small-cap index slipped 0.35%. And in the Sensex index, 20 out of 30 companies ended in the positive territory. The top gainers were Power Grid, which gained nearly 4%, Axis Bank, which added more than 2%, and NTPC increased nearly 2%. Conversely, the top laggards today were Tech Mahindra, which shed more than 2%, Tata Motors lost more than 1%, and Titan declined nearly 1%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 11 out of 20 sectors logged losses. The top laggards were consumer durables, which shed 0.6%. IT lost more than 0.5%, and FMCG fell nearly 0.5%. Meanwhile, the top gainers today were utilities, increased nearly 1%, power added 0.8%, and realty advanced 0.7%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as out of 4,065 companies, the shares of 1,697 advanced, 2,256 declined, and 112 remained unchanged. Siddharth, all the indices, the Sensex, the Nifty, hitting their all-time record history. Hi, how do you see this?
As you said in your report also, as you read out in the report, that for last five consecutive sessions, we have been seeing market touching record highs. I think the bulls are not, they still continue to be upbeat. And so I think, that is the reason. And I would say primarily there is, as you see the things, uncertainty in the world, whether it is US or the European continent, or even if you come to our neighbors, China, just yesterday they announced a huge stimulus to their economy. So I think India continues to be an outliner in terms of growth trajectory and in terms of macroeconomy stability. So that is one reason. Plus, I think the other reason is obviously, yes, we have been seeing the Indian domestic investors lining up in the Indian markets in a huge way. And that is one big reason why we continue to see these huge investments, huge amount of money coming into Indian markets, and this kind of surge. And this is despite we have seen instances where FIIs have withdrawn money in a big way. We are even currently we are seeing FIIs being very conservative. There have been regularly they have been shedding or selling in the Indian market. Despite that, we continue to see the surge in the Indian market. So I think primarily that is the reason which continues to drive the Indian share market.
How much of the Fed rate cut would you attribute to the Indian markets kind of scaling these heights? And especially you talked about the FIIs and the FPIs kind of shedding weight or kind of pulling out of the Indian markets, comparatively speaking. So still, do you think that the retail investors in India as well as the DIIs kind of sustaining the momentum which is going on, of course, even before the Fed rate was cut?
See, I would not say that the FIIs is also exiting Indian market, yes, but what they're doing is probably they're also changing their strategy. Plus, I think they're also worried about the current valuations, high valuations in the Indian market. So, and plus, there are cheaper options available to them. And their FIIs, the psyche behind their investment is maximization of profit. So, wherever they see better prospects, obviously, they shift their money accordingly. Plus, as you rightly said, Indian investors, the domestic institutional investors continue to outpace the FIIs. Indian markets, whenever we see even FIIs withdrawing on a certain day in huge, in large numbers, we see the opposite in
DIIs.
Yeah, in terms of DIIs as well as retail investors. And right, that is visible if you look at the systematic investment plan or money coming into mutual funds, into different schemes. So I think all that is driving. Plus what you said, Fed also would have, is obviously something, obviously that interest rates have been cut there also pushes people into Indian markets, because the interest rates coming down, India still continues to be that way. We have interest rates which are largely attractive, plus Indian markets continue to be attractive, the kind of return, the kind of stability. So that is also largely, come to think of it, in the entire world, anywhere, even economies like US, China, there are challenges, there are issues. But in terms of Indian markets, currently Indian economy, I would say there are obviously there are no big challenges or big issues that continue, which have are in any way bothering us. So I think that kind of stability I think is also pushing people. And obviously, another reason is, where do you get these kind of returns? Which part of the world? So I think that also is a reason which is driving. And the mindset, the change in the mindset of Indian investors, the younger generation, which is coming now largely into stock markets.
जी, आपने शुरू में ही वैश्विक समीकरणों की बात की थी, कुछ चिंताओं की बात की थी, लेकिन देखिए जिस तरह से हिजबुल्ला पे हमला लगातार बढ़ रहा है, अटैक पे अटैक, चिंताएं होनी चाहिए, लेकिन लगातार हम पांचवें दिन जो है रिकॉर्ड हाई पे पहुंच रहे हैं, तो ठीक है, उसका अपना एक असर है, उसकी अपने उसके अपने गणित हैं। क्या मौजूदा रैली में इनसे कुछ बाधाएं आ सकती हैं बीच बीच में?
देखिए, थोड़ा बहुत हमको, मुझे जो लगता है कि आपको कहीं ना कहीं हो सकता है दिखे कि करेक्शंस, किन्हीं दिनों मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को हमें मिल भी सकता है, लेकिन और जैसा अगर आप आज ही जो स्टेटमेंट था जो रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास का, कि जो आने वाले समय में जो चैलेंजेस होंगे सेंट्रल बैंक्स के लिए, वो शायद उनको जो वर्ल्ड ऑर्डर या बाहर जो इंस्टेबिलिटी होगी दुनिया में कहीं और, तो शायद अगला जो चुनौती होगी सेंट्रल बैंक्स की, वो ज्यादा उन्हीं फैक्टर्स से आएगी जो वर्ल्ड में कहीं इंस्टेबिलिटी होगी, और वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, कैपिटल फ्लोज हो, या वो रिस्ट्रिक्टिव, एक जो आजकल एक नया ट्रेंड है कि रिस्ट्रिक्टिव टेंडेंसीज हर इकोनॉमी अपने अपना रही है, तो उस तरह का आप जो कह रहे हैं छोटे छोटे ब्लिप्स आ सकते हैं मुझे, लेकिन हाँ एक बात जरूर मैं कहूंगा, जैसा आज मार्केट में भी दिख रहा है कि वैल्यूएशंस की चिंता अब दिख रही है, इन्वेस्टर्स में भी दिख रही है, तो ज्यादा लोग अब थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स में जा रहे हैं या ऐसे कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं जहां उनको ज्यादा स्टेबिलिटी लग रही है, जहां उनको ये प्रूवन बिजनेस मॉडल, एक जो नैरेटिव होता, नैरेटिव बेस्ड इन्वेस्टिंग थी, उससे लोग थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। प्लस जो आपने बोला कि जो आपने मिड कैप है या स्मॉल कैप है, वो भी ओवर हीटेड अब दिख रहा है, तो शायद इसीलिए लोगों को जो वैल्यूएशन की चिंता, इसी वजह से थोड़ा वहां से भी लोग वो ट्रेंड में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। एफआईआईज ने भी, मतलब अब हमको लगता है आने वाले टाइम में हमको जल्दी जल्दी नए ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। आईपीओज में लोग बहुत पैसा डाल रहे हैं, वो भी मार्केट को ड्राइव कर रहा है, और जो रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो शायद वो लोगों के दिमाग में उन सब चीजों का एक ओवरऑल इम्पैक्ट है कि ये एक जगह है जहां पैसा बहुत तेजी से रिटर्न लोगों को मिल रहे हैं, शायद इसीलिए आप देख रहे हैं कि लोग इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। तो छोटे छोटे ब्लिप्स आएंगे, जो आपने बात कही वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई बड़ा कंसर्न अभी हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से तो नहीं दिखता है। हाँ ये जरूर है, जो मैंने पहले भी कहा, जो सेंट्रल बैंक गवर्नर ने भी कहा है कि हो सकता है अगर वर्ल्ड दुनिया में कहीं इंस्टेबिलिटी आती है तो उनसे जरूर हमें भी इम्पैक्ट होगा।
सिद्धार्थ, यू टॉक्ड अबाउट the stability factor kind of driving the Indian markets. Of course, that's true. But you also talked about the all-time high valuations that the Indian market is sitting on at the moment, and mostly talking of the blue chip companies and others as well. Let's talk about the mid cap and the small cap stocks as well. All of them are mostly sitting at their peak mostly. So you also talk about the frenzy that the IPO is creating these days. You know, we have seen a flood, almost floodgates open with the IPOs coming in droves every week, almost 3 to 4 on an average coming, and people kind of spoiled for choice, I would say. Still, you say, do you feel rather that the Indian market still has some steam left in the coming days?
I think in terms of steam, I don't see that there is any question on that in terms of steam. Yes, but I would only say that any investor, whosoever is investing at these levels or even at any level, I would say, he needs to be cautious. He needs to educate himself, needs to, you know, do a proper fact check on the company, on the stock that he's investing or the mode of investment. So I think I would only, that is the caution, and that I think is a caution. If you are coming to the equity market, you need to understand these markets properly. But in terms of steam, I don't see. There could be hiccups going forward here and there until unless we see a major problem in the world order. So until then, I don't see. Because for if you look at inwards, look at our own economy, our growth story continues to be intact. In terms of one factor which was worrying us was inflation. That has also started moderating, and we should see it within the RBI band of 2-4% by, I think, the fourth quarter of the current financial year. So that plus post-elections, there was obviously election brings in some kind of instability, so that clarity is also there. Whether a government which is currently not a majority government, but there was question marks whether it will be stable. So I think all those kind of things are also getting clearer, and government on a daily basis we are seeing new announcements, new cabinet decisions. Budget was very pro growth, so and employment oriented budget. So we have seen capital expenditure. Finance minister has been taking regular meetings, and the emphasis is on pushing the capital expenditure of the government. So I do not see any major road breaks until unless something major happens around in the world.
Right, Siddharth. We'd like to draw your attention, and especially I guess that our listeners would be too interested in it. We were discussing just a short while ago about the IPO frenzy that's being created these days. We are kind of caught in a whirlpool of IPOs, if I may say that. To you, what's exactly the philosophy behind such a kind of a rush with the IPO story happening?
See, Nishit, I would say I think one simple thing which is driving people is I think the returns. Mm-hmm. Most of the IPOs which have been listed in the past few weeks or months, the kind of returns people have logged in. Mm-hmm. So I think that is making people run for these IPOs. The clamor is because of that. One of the IPOs, we don't take names in this program, mm-hmm. but you would have seen was one of the record.
Yes.
Saw the record.
Of more than 100%.
Yeah. So
listing gains, yes.
Yeah. So not only listing gains, the amount of people
yes.
Putting in their bids for that IPO. So,
true.
So I think, but obviously, yes, that is true. And this is the time when people need to be careful, because you're just looking at the gains, but you need to be careful in terms of doing your own groundwork. It shouldn't be like you just put your money on some hearsay or this phenomena that people are making a lot of money in IPO, or so you end up making a mistake and burn your fingers or you lose your money. So I think that one needs to be careful.
Careful is the word, Siddharth, as you mentioned, and rightly so, because even the RBI and not the RBI, but the SEBI some time back had cautioned people, because if we look back maybe a month back or so, or maybe 15-20 days back, there was one company, of course we don't take names here in this program, there was one company which had floated its IPO. And which actually, we don't understand.
I'm getting your hint.
What yes.
I can.
So actually, there was a lot of public participation in that IPO. But the background check, as you mentioned, you talk about, is so important that it goes without saying that people must do their kind of, the background check and everything. And the company we are talking about, of course, we are not taking the name of the company. It was a company which was not so kind of,
fundamentally strong.
Fundamentally not very strong. And of course, forget about being fundamentally strong. It was just a kind of a couple of rooms kind of a shop kind of a company, which with less than almost 10 employees, working there. And imagine the kind of euphoria it generated. Almost 90 to 80 times it was, subscribed. The IPO was subscribed. So what do you, of course, caution is the word here. But one more thing which SEBI says here is that you need to do your own homework before investing. Of course, the first basic which you need to understand is to go through the balance sheet of the company and the filings which to do with the regulatory authorities, of course. So this is of course one thing. But in the coming days, if we talk about, there are many other big ticket IPOs which are lined up probably in the next couple of months. People are, as we discussed some time back, they are spoiled for choice. And of course, the funds, it's a micromanagement sort of, for people to micromanage their funds in all these things. So yes, of course, that's very true. And my colleague Vibhuti ji is there with the next story here.
रुपये का हाल जानते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7 पैसे की मजबूती के साथ 83 रुपये और 60 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 100.42 पर कारोबार कर रहा था। और अब लगे हाथ एशिया और यूरोप के बाजार का हाल भी श्रोताओं को बता दें। 5 प्रमुख एशियाई सूचकांकों में से 3 गिरावट के साथ बंद हुए हैं। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 1.3%, सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में 1.1% और जापान के निक्केई में 0.1% की मामूली गिरावट आज हुई है। इस बीच चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 1% से ज्यादा का फायदा और हांगकांग के हैंग सेंग सूचकांक में 0.5% का मुनाफा रहा। प्रमुख यूरोपीय सूचकांक आज अंतिम समाचार मिलने तक मिला जुला कारोबार कर रहे थे। जर्मनी का डेक्स 0.29% और फ्रांस का कैक 0.18% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, जबकि लंदन का फुटसी 0.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था।
And moving on to the US markets, the US stocks inched higher yesterday with the S&P 500 and Dow Jones Industrial Average reaching record highs. This uptick was largely driven by rally in mining stocks after announcement of China's extensive stimulus measures. The Nasdaq composite increased more than 0.5%, and S&P 500 gained 0.25%, and the Dow Jones Industrial Average rose 0.2%. And in some other stories, the Union Minister for Commerce and Industry, Piyush Goyal, has said that India and Australia are working towards strengthening the Economic Cooperation and Trade Agreement, ECTA, through the Comprehensive Economic Cooperation Agreement. He said that the ECTA agreement has resulted in market access to both sides and resulted in significant increase in merchandise trade between the two nations. While addressing a joint press conference in Adelaide today, Mr. Goyal has announced the setting up of an office for trade in Sydney, Australia. The office will consist of representatives of Invest India, National Industrial Corridor Development Corporation Limited, Export Credit Guarantee Corporation of India Limited, among others. He said these offices will act as a bridge between investors and the businesses. Mr. Goyal also highlighted the success of Make in India program. He said that the program has been a resounding success, which encourages the startup ecosystem and promotes manufacturing in India.
और एक अच्छी खबर आज की, एशिया पावर सूचकांक में भारत जापान को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कोविड के बाद भारत ने आर्थिक विकास की अपनी क्षमता में 4.2 अंक की वृद्धि की है। इस वृद्धि से पता चलता है कि भारत की युवा जनसंख्या आने वाले दशकों में जनसांख्यिकीय लाभांश प्रदान कर सकती है। बता दें कि सूचकांक में 27 देशों और क्षेत्रों को उनके बाहरी वातावरण को आकार देने की क्षमता के आधार पर स्थान मिलता है। सिद्धार्थ जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस खबर?
नहीं, बहुत पॉजिटिव खबर है। और आप इसको देखिए कि अगर जो इसके तीन मूल जो कारण है, एक तो यह है कि हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो स्टोरी है और खासकर जो उसको स्ट्रेंथ मिली है या उसको मजबूती मिली है पोस्ट कोविड, जिस तरह से हमने कोविड का मुकाबला किया और अर्थव्यवस्था पे जो उसके दुष्प्रभाव जो पड़े भी थे, तो उनसे हम बहुत तेजी से उबर कर आए। और दूसरा, आप देखेंगे कि जो आपने डेमोग्राफिक की बात की, हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसका जो है पॉजिटिव इंडिया के लिए वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तीसरा, जो हमारी डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है, जो खासकर जो 2014 के बाद जो जिस तरह की जो लीडरशिप प्रोवाइड की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल फोरम पे, तो और उसका एक हाल ही उदाहरण आप देख लें, जैसे हम लोग जो मध्यस्थता हम कर रहे हैं यूक्रेन और रशिया के जो बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको रुकवाने के लिए जो मध्यस्थता कर रहे हैं, उसका जिस तरह का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स प्राइम मिनिस्टर को मिल रहा है, तो वो जो मूल तीन कारण वो है, प्लस इंडिया की बढ़ती मिलिट्री इन्फ्लुएंस और फ्यूचर पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो ये सब कारण है जो तीन जो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से आज हम जापान से भी इस इंडेक्स में जापान से भी ऊपर हमको जगह मिली है।
सोना और चांदी का हाल जानते हैं। सर्राफा बाजार में सोना आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.28% बढ़कर 75,630 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.50% घटकर 92,000 ₹100 प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.34% बढ़कर ₹75,255 प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.31% घटकर ₹92,108 प्रति किलोग्राम पर चल रहा था।
सिद्धार्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्ड। हैज गोल्ड रियली आउटशाइन द इक्विटीज, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द फॉलिंग रेट एनवायरमेंट? बिकॉज इफ वी लुक एट द डेटा फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, gold has returned 60% return in the past 2 years as compared to the equities, which is pegged at 47.3%. And even if you talk about this current fiscal year, it has outpaced rather the equity markets. So you really think it's still a safe haven for investors?
और इसी में एक प्रश्न मैं ये जोड़ दूं इन्हीं में कि जो तात्कालिक प्रभाव है, जो अभी गोल्ड का प्राइस जो अभी थोड़ा देर के लिए भी ठीक था, जो कम हो रहा था, तात्कालिक प्रभाव क्या है? क्या डॉलर की कमजोरी है या जो स्ट्रेस बढ़ा है उसको देखते हैं? क्योंकि जब भी स्ट्रेस बढ़ता है तो फिर सोने की कीमतों में थोड़ा उछाल आता है।
नहीं, देखिए, आप दो अगर दोनों सवालों को कंबाइन किया, एक तो निशित जी ने जो बोला हिस्टोरिकली अभी तक ये जो बात आपने
निश्चित तौर पर 2 साल का जो बिल्कुल
मतलब हिस्टोरिकली आप कभी से भी उठा लें, गोल्ड हैज बीटन स्टॉक्स ऑलवेज, तो उसमें कोई डाउट है ही नहीं कि इट। और जहां तक सेफ्टी की बात है, मुझे लगता है इट इज द सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट। और अगर ना होता और क्यों है ये भी, उसके पीछे भी आप कारण देखें कि अगर दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक को देखेंगे या रिजर्व बैंक जिसको बोलते हैं किसी भी देश का, तो उनका एक बहुत बड़ा जो भंडारण वो गोल्ड के फॉर्म में ही होता है, जो वो एसेट जिस एसेट में वो इन्वेस्ट करते हैं। और वो क्यों करते हैं? फॉर एनी रेनी डे, क्योंकि ये एक वो एसेट है जो हमेशा, जिसको आप कभी भी मतलब कैश कर सकते हैं। तो दिस इज प्लस, आपने जो बात बोली कि क्यों ऐसा है, इसके पीछे तमाम कारण है। जैसे आपने बोला यूएस में इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, एक वो कारण है, चाइना में इंस्टेबिलिटी है, दुनिया में जब इंस्टेबिलिटी आई और जब पिछले 4-5 साल जब से कोविड के बाद से ये इंस्टेबिलिटी है, तो दुनिया में जितने भी सेंट्रल बैंक हैं सभी ने गोल्ड परचेजेस बढ़ाई हैं, वो भी एक कारण है। और आपने अभी एक जिक्र किया, जो बीच में गोल्ड प्राइसेस घटी थी, तो वो घटी तो इसलिए थी कि कुछ हमारे अपने डोमेस्टिक कारण थे, हमने बजट में ड्यूटीज को बहुत हेविली काटा था, और तो उसकी वजह से एक इमीडिएट इम्पैक्ट दिखा था गोल्ड प्राइस। बट गोल्ड कंटिन्यूज टू बी अ वेरी अट्रैक्टिव सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्टर, एंड वो मुझे लगता है अभी तक और कोई क्लास मतलब एसेट क्लास आया नहीं जो गोल्ड को अभी बीट कर रहा हो, और या उसके साथ की जुड़ी हुई सिक्योरिटी। आप शेयर मार्केट में भी लगाते हैं, लेकिन कोई सिक्योरिटी आज है आगे होगी उसकी कोई वो नहीं, लेकिन गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आप निरंतर ऊपर ही जाता है। मतलब अभी भी लोग नंबर्स दे रहे हैं कि अगले दिवाली तक और ऊपर चला जाएगा।
लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि भाई चांदी जो है वो 1 लाख तक और सोना जो है वो 80,000 के आसपास
क्रॉस कर जाए। ये तो लोगों का अनुमान है, हो सकता है कि वो अनुमान उससे भी ज्यादा कुछ हो जाए। तो
सो ऑल इन ऑल, गोल्ड स्टिल ग्लिटर्स एंड इट्स स्टिल द सेफ हेवन फॉर इन्वेस्टर्स। And now moving on to crude, oil prices declined today amid speculations whether China's stimulus plans will be able to boost its economy and spur the fuel demand in the country, which is the world's largest crude importer. In the global crude market, Brent crude was trading nearly 2% down at $73.71 per barrel, and the U.S. West Texas Intermediate, that is WTI, was more than 2% down at $69.95 per barrel when reports last came in.
और सिद्धार्थ जी, मार्केट मत में शामिल होने और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और श्रोताओं को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सुर्खियां हमारे सहयोगी निशित कुमार से।
थैंक यू सो वेरी मच सिद्धार्थ फॉर हैविंग ज्वाइंड अस एंड काइंड ऑफ एनलाइटन्ड आवर listeners so much. Thank you so much. And before we close, a reminder of the headlines once again. Domestic benchmark indices continue to rally for the 5th consecutive session. Sensex crosses 85,000 while the Nifty settles over 26,000 for the first time. Indian rupee appreciates 7 paise to close at 83.60 rupees against the US dollar. India surpasses Japan to become the 3rd most powerful nation in Asia, reports the Asian Power Index. And crude oil prices trading lower amid speculation about China's stimulus plans. Well, that's it from this. In this edition of Market Front Mantra, from the entire team here, it's goodbye.
Namaskar. Market Mantra. Market Mantra.